अगर ये सब आपकी बेटी के साथ हुआ होता तब भी यही कहती आप? अगर आपके बेटे ने जो मेरे साथ किया वही आपका दामाद आपकी बेटी के साथ करता तो उसे भी यही सलाह देती आप?
बिल्कुल सही सलाह देती, क्योंकि जानती हैं कि दुनिया में सारे मर्द ऐसे ही होते हैं और औरत को ही अपना घर परिवार संभालने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। हम तो उन्हें यही समझाकर भेजते और भेजेंगे कि अपने पति की हर जरूरत पूरी करनी है, उनका ख्याल रखना है, उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देना, विवाह के फेरे लेते ही खुद को पूर्ण रूप से अपने पति को समर्पित कर देना, उनकी हर बात मानना ताकि उनके पति का प्यार उन्हें मिले और उनका रिश्ता मजबूत हो। अगर शुरुआती दौर में ही वो उनकी बातों का विरोध करेंगी तो रिश्ता उनका खराब होगा, जैसे अभी तुम्हारा और अजय का रिश्ता खराब हो रहा है। अगर तुमने उन्हें मना नहीं किया होता तो वो खुश रहते और तुम्हें भी खुश रखते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है अजय, और अपने रिश्ते पर ध्यान दो, सब्र से काम लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक पल के लिए भी ये सब कहते हुए वो झिझकी नहीं और ना माथे पर एक सिलवटी उभरी। राधिका अचंभित सी उन्हें देखती रही। जब बात पर गौर किया तो पाया कि गलत नहीं कह रही थी वो, पर मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे। क्या गलत किया था उसने? क्या अपने पति को अपने दिल की बात बताना गलत था? क्या उससे ये उम्मीद रखना गलत था कि वो उसे समझे और उसकी इच्छा का सम्मान करे? क्या एक अनजान शख्स जिसे ना उसने पहले देखा ना कभी बात की उसे यूं ही खुद पर अधिकार दे देती, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अनजान शख्स अब उसका पति है? क्या अगर वो इन सब से पहले उस शख्स को जानना चाहती थी तो ये उसका गुनाह था? क्या उसने इनकार किया तो अजय को ये हक मिल गया कि उसके साथ जबरदस्ती करे, क्योंकि वो उसका पति है और शादी का बंधन उसे सारे हक देता है? उसके ही शरीर पर अब उसका कोई हक नहीं, रिश्ता दोनों का है पर उसकी मर्जी की कोई अहमियत नहीं। मन में सवालों का तूफान सा उठ रहा था और वो बहुत कोशिशों के बाद भी खुद को उनसे सवाल करने से रोक नहीं पाई थी। शादी तो दो लोगों की होती है ना, अगर वो मेरे पति हैं तो मैं भी तो उनकी पत्नी हूँ, फिर सिर्फ उन्हीं की ही मर्जी, उन्हीं की इच्छा, उन्हीं की चाहत और उन्हीं की खुशी क्यों मायने रखती है? क्या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, या अब क्योंकि मेरी शादी हो गई है तो मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं? मेरा मन हो या ना हो पर करना मुझे वही है जो मेरे पति कहेंगे। ऐसा क्यों? मैं पत्नी हूँ उनकी, गुलाम तो नहीं। बात तुम्हारी ठीक है पर सदियों से यही होता आ रहा है। वक्त भले बदल गया है पर औरतों की स्थिति आज भी वैसी ही है। शादी के बाद औरत को बहुत से समझौते करने पड़ते हैं, अपने रिश्तों और गृहस्थी को बचाने के लिए अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, पति और परिवार की खुशी के लिए कई ऐसे काम करने पड़ते हैं जिन्हें करने का दिल नहीं होता। एक खुशहाल परिवार औरतों के त्याग और समर्पण से ही बनता है। पत्नी जब अपने पति का सम्मान करती है, उसे स्नेह और प्रेम देती है, उसकी जरूरतों का ख्याल रखती है, पूर्ण रूप से खुद को अपने पति को समर्पित करती है तो पति खुश होता है, रिश्ता मजबूत होता है और फिर वो अपनी पत्नी को भी खुश रखता है। इस खुशी के लिए समझौते करने पड़ते हैं। तुम भी जो हुआ उसे भूल दो और अजय के साथ इस रिश्ते की दोबारा शुरुआत करो। उनसे बातें करो, उन्हें जानो, समझो, उनको खुश रखने की कोशिश करो। तुम उनका ख्याल रखोगी, उन्हें खुश रखोगी तो वो भी तुमसे प्यार से पेश आएंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें खुश रखेंगे और आप दोनों का रिश्ता सुधर जाएगा। अब तुम आराम करो, ऐसे तुम्हारा बाहर आना ठीक नहीं तो कमरे में ही रहो, हम तुम्हारा खाना यहीं भेज देते हैं। ललिता जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर चली गईं, पर पीछे छोड़ गईं राधिका के दिल में सवालों और भावनाओं का सैलाब। उसे अपनी माँ की कही बात याद आने लगी, उन्होंने भी तो यही सब समझाया था उसे, पर उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी ये गति करवा ली। मतलब इस रिश्ते में मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, मैं एक कठपुतली हूँ जिसकी अपनी कोई मर्जी, कोई इच्छा, कोई पसंद, कोई चाहत नहीं। मेरे अपने शरीर पर मेरा अब कोई अधिकार नहीं, इनकार करने का कोई हक नहीं मुझे। मर्जी सिर्फ उन्हीं की चलेगी जो मेरा पति है। सब चाहते हैं कि मैं बस वो करती रहूं जो अजय चाहते हैं, उन्हें खुश रखूं, उनकी गुलामी करूं, उनकी जरूरतों को पूरा करूं। अगर मैं उनकी काम वासना की पूर्ति करने से इनकार करती हूं तो उनके पास मेरे साथ जबरदस्ती करने का हक है। अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए वो मुझे धोखा भी दे सकते हैं, और अगर इन सबको मुझे रोकना है तो मुझे उनकी उपभोग की वस्तु बनना होगा, उनकी गुलाम बनकर उनका हर हुक्म मानना होगा। क्या यही मतलब है शादी का? और इस रिश्ते में यही औकात है मेरी? क्या दुनिया में सारे पति ऐसे ही होते हैं और हर लड़की को शादी के बाद ये सब सहना ही पड़ता है? राधिका इन्हीं सवालों में उलझी थी जब अजय की कड़क आवाज उसके कानों से टकराई। लो खाओ इसे। राधिका ने नजर उठाकर उसे देखने तक की जहमत नहीं उठाई, ना ही चौंकी, बस अपने चेहरे के सामने मौजूद उसकी हथेली को घूरने लगी जिस पर कोई दवा रखी थी। खाओ भी, घूर क्या रही हो? अजय झुंझलाते हुए बोला। अब की बार राधिका की सवालिया निगाहें उसकी ओर उठ गईं। किस चीज की दवा खिला रहे हैं मुझे? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। कल रात तो अचानक हो गया, कोई तैयारी नहीं थी मेरी, पर इतनी जल्दी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं चाहिए मुझे। आगे से मैं प्रोटेक्शन इस्तेमाल करूंगा। अभी इसे खाओ। मैं कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं इस बात की चिंता है आपको, पर मेरे दर्द की कोई चिंता नहीं। ये शिकायत राधिका के दिल ने की थी, पर लब खामोश थे, निगाहें यूं ही अजय को तकती रही थी। फिर राधिका ने उस पर से निगाहें फेर ली और चुपचाप उस दवा को खा लिया। दिल करे तो ये भी खा लेना, दर्द आराम हो जाएगा। अजय ने एक पत्ता टेबल पर रखा और अलमारी की ओर बढ़ गया, जबकि उसकी बात सुनकर राधिका की हैरानी भरी निगाहें उसकी ओर उठ गई थी। दवा दे गया था, पर एक बार भी उससे माफी नहीं मांगी थी, उल्टा अपनी इस हरकत को भी सही कह रहा था। शाम का वक्त था, राधिका अपने कमरे में ही थी। सुबह से यही तो थी वो, अकेले उदास, अपने दुख से जूझती। आशुतोष जी का फोन आया तो उसने अपनी उदासी छुपाते हुए लबों पर हल्की मुस्कान सजा ली। हेलो पापा, कैसे हैं आप? राधिका की खुशी से खनकती आवाज आशुतोष जी के कानों से टकराई तो उनके लब भी मुस्कुरा उठे। हम अच्छे हैं बेटा, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ पापा, बस आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत दिल कर रहा है आपकी गोद में सर रखकर लेटने का, कहते हुए राधिका की आवाज भर्रा गई और गला चोक हो गया, आंखों में पानी आ गया। आशुतोष जी भी कुछ भावुक हो गए। बेटा अपनी मम्मी से बात करो। खुद को कमजोर पड़ते देखकर आशुतोष जी ने फोन अर्चना जी को थमा दिया। राधिका ने भी खुद को संभाला और झूठी मुस्कान अपने लबों पर सजा ली। राधु बेटा कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? और वहाँ सब कैसे हैं? हम भी ठीक हैं बेटा, और बाकी सब भी ठीक हैं। आपके वहाँ सब कैसे हैं? सबका आपके प्रति व्यवहार कैसा है? दामाद जी ख्याल तो रखते हैं ना आपका? उनके सवाल सुनकर अनायास ही राधिका की नजर टेबल पर रखे उस दवा के पत्ते पर चली गई और मुस्कान में अजीब सा दर्द और उदासी घुलने लगी। यहाँ सब अच्छे हैं मम्मी, मेरे प्रति उनका व्यवहार भी अच्छा है और अजय बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए और अपना ख्याल रखिए। सर्दी बढ़ रही है, तबीयत मत खराब कर लीजिएगा अपनी। इस बार मैं नहीं रहूंगी आपके पास आपका ध्यान रखने के लिए, तो खुद ही आपको अपना ख्याल रखना होगा। बोलते हुए राधिका की आंखें एक बार फिर नम हो गई थीं, तो उधर अर्चना जी की आंखें भी छलक आई थीं। हम अपना ध्यान रखेंगे बेटा, बस आप अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।
राधिका को लगा जैसे किस्मत उसे मुंह चढ़ा रही थी कि खुश, और वो कुछ अजीब से भाव उसके चेहरे पर उभरे। कुछ देर वो दोनों से बातें करती रही, अपनी बहनों से भी बात की और फिर फोन रख दिया। इस दौरान बहुत बार मन किया कि अपना दर्द अपनी माँ से बांटे, पर जानती थी कि वो भी वही कहेंगी जो ललिता जी ने कहा था। वही बातें तो समझाकर उन्होंने उसे यहाँ भेजा था। उसकी हरकत पता चलती तो खूब नाराज होती और एक बार फिर उसे दोषी ठहराया जाता, इसीलिए चुप रह गई। एक बार फिर खाली बैठे बैठे कई ख्याल मन में आने लगे। अपने हमसफर की जो तस्वीर उसने बुनी थी वो तो दो दिनों में ही टुकड़ों में टूटकर बिखर गई थी और उसके कीर्चे उसके वजूद को लहूलुहान कर गए थे। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसका पति उसके साथ ऐसा जानवरों जैसे सुलूक करेगा। अजय की नज़रों में मेरा कोई सम्मान नहीं, उसकी मर्जी की कोई अहमियत नहीं, इतना समझ गई हूँ मैं। इस रिश्ते में मेरा कोई वजूद नहीं, जान गई हूँ मैं। अजय जैसे खुदगर्ज, अभिमानी, रूढ़ और पत्थर दिल आदमी के साथ मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगी, ये भी जानती हूँ, पर मुझे इस रिश्ते को निभाना होगा। क्या कहूँगी मैं कि मेरा रेप हुआ है और करने वाला मेरा खुद का पति है? समाज तो क्या मेरा खुद का परिवार इस बात को नहीं स्वीकारेगा? सब मुझे ही दोष देंगे कि मैंने ही उसकी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखा और उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर मजबूर कर दिया। हिंदू समाज तो खुद पति को पत्नी पर सभी अधिकार देता है और पत्नी को इनकार करने का अधिकार ही नहीं। हमारा कानून तक मैरिटल रेप को रेप नहीं मानता, चाहे उस औरत की मर्जी के खिलाफ उसकी इज्जत पर प्रहार किया गया हो, उसको कितना ही टॉर्चर किया गया हो, उसकी भावनाओं को आहत किया गया हो, पर ऐसा करने वाला पति है तो सब माफ़ है। सबकी नज़रों में मैं ही गलत हूँ, मेरा ही दोष है। अगर ये बात बाहर आएगी तो सवाल भी मुझ पर ही उठेंगे, मुझे ही गलत ठहराया जाएगा, मेरे ही किरदार पर सवाल उठेंगे, बदनामी भी मेरी ही होगी। इसीलिए सब चाहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाऊं और उस शख्स पर खुद को समर्पित कर दूं जिसने मेरी आत्मा को घायल कर दिया। क्या इतना आसान है उस भयावह रात को भुलाकर उसी शख्स के साथ एक कमरे में एक छत के नीचे रहना जिसने मेरे स्वाभिमान को रौंद डाला, मेरी अस्मत को लूटा, मेरी भावनाओं को छिन्न भिन्न करके रख दिया, मेरी रूह को घायल किया, मेरे विश्वास को तोड़कर मुझे कभी ना भरने वाले जख्म दिए? कैसे माफ़ कर दूं मैं उस शख्स को जिसने मेरी इज्जत की रक्षा करने का वचन तो दिया पर खुद ही मेरे साथ हैवानियत की सभी हदें पार कर दीं, जिसे मेरा सम्मान करना था पर उसने खुद मेरे स्वाभिमान को छलनी कर दिया, जिसने प्यार करने का वादा किया था पर अपनी हवस की आग में अंधा होकर दरिंदगी पर उतर आया? मुझसे नहीं होगा ये। सह जाती होंगी लड़कियाँ अपनी शादी बचाने के लिए अपने पति का हर तरह का व्यवहार, पर मुझसे ऐसा नहीं होगा। मैंने तो अपने पति से सिर्फ सम्मान और थोड़ा सा प्यार मांगा था, जब वही नहीं मिलेगा मुझे तो इस रिश्ते की मेरी नज़रों में कोई मायने नहीं।
मैं अब कभी आपको अपने दिल में वो मुकाम नहीं दे सकूंगी जो पति होने के नाते पहले मैंने आपको दिया था। गलती असल में मेरी ही थी जो मैंने आपसे ऐसी उम्मीद रखी कि आप समझेंगे मुझे और वक्त देंगे मुझे। मैं तो भूल ही गई थी कि आप मर्दों से ना बर्दाश्त नहीं होती। लड़की का इनकार तो आपकी मर्दानगी पर जाकर लगता है, आपके मर्दाना गुरूर को आहत करता है और फिर उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ तो ना करने वाली आपकी अपनी बीवी थी जिस पर आप अपना स्वामित्व समझते हैं। वही पत्नी थी जिस पर शादी के फेरे होते ही आपको सभी अधिकार मिल गए थे। फिर भला आप मेरा इनकार कैसे बर्दाश्त करते? आपके पौरुष ये कैसे स्वीकार करता कि आपकी पत्नी ने आपको अपने करीब नहीं आने दिया? यही होना था मेरे साथ। बीती रात की याद आते ही उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गईं और दर्द भरी सिसकियों के बीच दिल से एक आवाज़ निकली, जिंदगी ने कैसे मोड़ पर हमें लाया है, बेगानी सी आज अपनी ही परछाई है, महफिल में भी संग एक तन्हाई है, लबों पर मुस्कान है पर आंखें छलक आई हैं, जिंदगी एक किस मोड़ पर हमें लाई है। टू बी कंटिन्यूड।